राम हरे राम
हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे
राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण इस्कान इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से आप सबका स्वागत है। आज गोवर्धन पूजा के महत्वपूर्ण दिन के ऊपर जया माता जी के घर के सायंकाल के सत्संग में माता जी का भी आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने हम सबको भगवान की कथा और कीर्तन करने का अवसर दिया। भगवद गीता के 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। विभूति का मतलब है कोई विशेषता जिससे जिसको देख के आदमी आश्चर्यचकित हो जाए, ये कैसे हो सकता है। विभूति का मतलब समथिंग व्हेन यू सी यू बिकम कंप्लीटली बिवेल्डर्ड एंड स्ट्राइकिंग विथ वंडर, क्या है, अद्भुत है, उसको विभूति योग कहते हैं। उसका आरंभ कैसे होता है, नमे विधो सुरगण, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मुझे देवता नहीं जानते हैं। सुर कहते हैं देवता को, देवता मुझे जानते ही नहीं। भगवान कहता है देवता मुझे नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं, बोले स्वर्ग के भोग के अंदर लगे होते हैं, उनको भजन करने का टाइम ही नहीं है। भाई स्वर्ग में इतना सुख है कि भगवान का नाम लेने का समय नहीं मिलता। जब परेशानी होती है, जब राक्षस आके असुर आके उनको डराते हैं भगाते हैं ना, तब वो भगवान के शरण में जाते हैं, साधारण नहीं जाते। तो किसी ने कहा फिर आपको देवता नहीं जानते हैं तो महर्षि तो जानते होंगे, ऋषि मुनि, बोला ना महर्षि ऋषि भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं, बोला अहम आदि ही देवानाम, भगवान श्री कृष्ण कहते उनका आदि मैं हूं, मेरे से उनका जन्म हुआ है, मेरे कैसे जानेंगे। जैसे बेटा बाप के सब कारोबार को जाने, घर दुकान मकान को जाने, लेकिन बाप की शादी कब हुई थी उसका पता बेटे को तो नहीं होगा, तब तो जन्म ही नहीं हुआ था, कैसे पता लगेगा। बाप की शादी का तो वो बेटा भी बता सकता है, था ही नहीं तो कहां से बताएगा। तो ये देवता थे ही नहीं भगवान कहता है तो कैसे मेरे को जानेंगे, ये तो पैदा ही मैंने किया है इनको। तो इसलिए कृष्ण लीला में ऐसे अन्य देवता अनेक देवता हैं जो भगवान को नहीं जानते। इस श्लोक के अनुसार ब्रह्मा भगवान को पहचान नहीं सका, जान भी नहीं सका। वेद का ज्ञाता वेद जानता है, चार मुख से चार वेद बोलता है, लेकिन छोटे कृष्ण ग्वाल बाल को ग्वालों के बीच में बैठे हुए वन में भोजन करते हुए जमुना के किनारे पहचान नहीं पाया। और आज जो उत्सव है इसमें स्वर्ग का राजा इंद्र वो भगवान श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाए। और एक और श्लोक भगवद गीता का है, 11वें अध्याय का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवापि कांक्षन्तः मम दर्शनाम। इसका अर्थ ये है देवता भी मेरे दर्शन के लिए लालायित होते हैं, उनको मेरा दर्शन दुर्लभ है, उनको देखने को मैं उनका उनको मेरा दर्शन नहीं मिलता। कई देवता कृष्ण के दर्शन के लिए बाल लीला में भगवान शंकर जी कई बार दर्शन करने के लिए आए, अंदर ही नहीं जाने दिए। तो आज जो दिन है वो भगवान श्री कृष्ण की महत्वपूर्ण शिक्षाएं और देवता भगवान को नहीं जानते हैं ये बात समझने का है। जो देवता भगवान को जानते ही नहीं है वो हमको भगवान से कैसे मिलाएंगे। पर जो भगवान को जानता ही नहीं है उसके पास हम जाएंगे तो कैसे वो हमको भगवान के पास ले जाएगा, भगवान को तो जानता ही नहीं है, वो खुद भी नहीं जानता। तो ये बात भगवान स्थापित कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के हो गए थे, जो अभी आप पूजा कर रहे थे, दामोदर लीला गा रहे थे, ये भगवान के 3 साल की आयु की लीला है, जब भगवान 3 साल के थे, गोकुल में थे। अब भगवान 7 साल के हो गए हैं, गाय चराते हैं, 5 साल तक बछड़े चराते थे, तब उसको वत्सपाल कहते थे, 5 साल के बड़े हो गए तो गैया चराने जाते हैं तो उसको गोपाल कहते हैं। तो भगवान 7 साल के हैं और कृष्ण और बलराम दोनों घर पे आए हैं गैया चरा के। देखते हैं तो सारे ब्रज के अंदर लोग बहुत काम में लगे हुए हैं, कोई बैलगाड़ियों में सामान लाद के ला रहा है, कोई उतार रहा है, कोई पका रहा है, इतना सारे काम में सारे शहर को देखा, पूरा ब्रजमंडल बहुत बिजी है। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी देखा कि सभी काम कर रहे हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग बूढ़े हैं वो काम नहीं कर सकते, वो एक जगह बैठे हुए, तो उनके बीच में चले गए कृष्ण बलराम। नंद बाबा वहां बैठे थे, उपनंद आदि बैठे थे और बड़े बड़े बुजुर्ग बूढ़े गोप बैठे थे। कृष्ण ने सबको प्रणाम करके बलराम के साथ जाके पूछा, बाबा बाबा ये सारा आज ब्रज इतना बिजी क्यों दिख रहा है, ये सामान उठा के इधर उधर कर रहे हैं, ये वो क्या क्या है, इनको क्या काम पे लगे हुए हैं। नंद बाबा ने कहा, ये बच्चे क्या समझेंगे, इनको बताएं कि क्या हो रहा है। तो नंद बाबा चुप रहे, तो कृष्ण बोला, बाबा साधु पुरुष कुछ चीज किससे छुपाते नहीं है, और मैं तो आपका बेटा हूं, जो भी कार्य हो रहा है मुझे पता लगना चाहिए, आप मुझे बताइए क्या हो रहा है। तो नंद बाबा बोला, बेटा कन्हैया कल बहुत बड़ा उत्सव है ब्रज में, 7 दिन चलेगा, और ब्रजवासियों के लिए गायों को घास चाहिए, और घास के लिए बरसात चाहिए, और बरसात इंद्र देवता करता है, इसलिए हर साल बहुत बड़ा इंद्र यज्ञ होता है। अच्छा बाबा इंद्र यज्ञ होगा, तो ये वेद शास्त्र में बताया है कि कोई परंपरा है, कि कोई लोक परंपरा है। तो नंद बाबा ने कहा, वेद शास्त्र में तो ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन हमारे दादा परदादा से ये परंपरा चली आ रही है। अरे कौन सी परंपरा है, लोकाचार की परंपरा है, ऐसी परंपरा इतनी घरों में चल पड़ी है, उसको धर्म की तरह लोग मानते हैं लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं, ऐसी परंपराएं कैसे शुरू हो जाती हैं। कल हम कहीं बता रहे थे, जब शादी होती है ना लड़के की, तो बहू जब पहली बार घर में आती है ना, तो सास उसके स्वागत के लिए कुमकुम का लाल पानी थाली में भर के रखती है, और बहू के चरण उसमें पांव पड़ने चाहिए, और वो लाल निशान घर के अंदर पहले आए तो लाल निशानों के साथ घर के अंदर प्रवेश करे कि लक्ष्मी का स्वरूप आ रही है घर में, भूतनी नहीं है। जब लक्ष्मी मानते थे पहले जमाने में, तो ये जो सास थी ये आने में देर कर रही थी, सामान तो तैयार था लेकिन आ नहीं पा रही थी, तो बहू तो आंख से देख रही है कि मेरी सास अभी नहीं आने दे रही है, घर में फिर कैसे रहने देगी। तो ऐसे लगता है बहू को पहले सास से डर लगता है। किसी ने पूछा, सास की डेफिनेशन क्या है, बोला जिसको देखकर सांस बंद हो जाए। और बोला हस्बैंड की डेफिनेशन क्या है, कि उसकी बैंड बजाओ फिर भी हंसता रहे। हरे कृष्णा। तो बहू ने देखा कि सास ने एक टोकरी लिया, एक बिल्ली के ऊपर ढक दिया। बहू ने देख लिया, सास ने घर में आने से पहले नई बहू को बिल्ली के ऊपर टोकरी ढक दिया। फिर पानी लाई, लाल पांव हुए, घर में गई। अब 12 महीने बच्चा हो गया, 15 साल के बाद बच्चा बड़ा होगा, 20 साल में बच्चे की शादी हुई। अब जब बच्चे की शादी हुई, लड़के की जब उसकी बहू आ रही है तो ये जाने में देर कर रही है, पानी तैयार पड़ा है, जा नहीं रही है। तो अंदर से अभी सांस जिंदा थी इसकी, उसने कहा देर क्यों कर रही हो, बहू को अंदर बुलाओ ना। बोला बिल्ली ढूंढ रही हूं। बोला क्या करोगे? बोला क्या करोगे? बोला टोकरे के नीचे रखूंगी। बोले क्यों? बोला मैं आई थी तब आपने टोकरे के नीचे बिल्ली रखी थी ना, तो ये हमारी परंपरा है, बहू आएगी तो बिल्ली टोकरे के नीचे रखनी पड़ेगी। वो बुढ़िया बोलती है बिल्ली की परंपरा नहीं है, घर में मिठाई बनी थी और बिल्ली घूम रही थी, मैंने बोला खराब न करे इसलिए थोड़ी देर के लिए टोकरे के नीचे दबा के रखी थी, ये कोई परंपरा थोड़ी है। लेकिन वो बुढ़िया मर गई होती तो बिल्ली नहीं मिलती, तो बहू बाहर खड़ी रहती, बोलता हमारी परंपरा है अंदर नहीं आने देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहते आपकी ऐसी परंपरा तो नहीं है कोई बिल्ली ढकने वाली, ऐसे ही इतना सारा माल खराब कर रहे हो, इंद्र को कभी देखा है आपने? आया है खाने के लिए यहाँ? और फिर इंद्र बरसात करता है, ये तो उसका काम है बरसात करना, अच्छे काम करोगे। पर समुद्र इंद्र को यज्ञ करता है क्या, उसके ऊपर बरसात क्यों करता है? जब बरसात होती है समुद्र में नहीं होती है क्या? होती है ना, तो क्या समुद्र यज्ञ करता है क्या? नहीं करता है ना, तो फिर उसकी पूजा करने की क्या जरूरत है? अरे हम तो वैश्य हैं, हमारे को गाय की पूजा करनी चाहिए जो दूध देती है, हमारा सारा कारोबार उससे चलता है। और पूजा करनी है तो ब्राह्मण की करनी चाहिए जो हमारे घर में आके सारी पूजा कराता है घर की। और पूजा आपको करनी है तो गिरिराज गोवर्धन की करो, जिसके ऊपर हमारी गैया चरने को जाती है, सबको पानी पीने को मिलता है। और ये गिरिराज साक्षात देवता है, इसकी पूजा निश्चित रूप से आपको करनी चाहिए बाबा। नंद बाबा को आश्चर्य लगा, ये बच्चा ऐसी विद्वानों जैसी बातें कर रहा है। उपनंद ने कहा आपकी बात तो ठीक है, लेकिन बाद में करेंगे पूजा, गोवर्धन भी करेंगे, ब्राह्मण की भी करेंगे, गाय की भी करेंगे, लेकिन अभी तो इंद्र का यज्ञ होने दो। बोले इंद्र के यज्ञ की कोई जरूरत नहीं, यही जो सामान तैयार पड़ा है ना अभी, इसी से पूजा करनी पड़ेगी गोवर्धन की। तो उपनंद ने पूछना बेटा कैसे करते हैं गोवर्धन की पूजा, कौन है गोवर्धन? तो कौन है गोवर्धन? गोवर्धन, गो मतलब गाय, वर्धन का मतलब जो गाय को सब चीजें जरूरी, घास आदि पानी आदि दे जिससे गाय सुखी रहे, उसको बोलते हैं गोवर्धन। और यही जो सामान तैयार पड़ा है ना अभी, इसी से पूजा करनी पड़ेगी गोवर्धन की। तो उपनंद ने पूछा बेटा कैसे करते हैं गोवर्धन की पूजा, कौन है गोवर्धन? तो कौन है गोवर्धन? गोवर्धन, गो मतलब गाय, वर्धन का मतलब जो गाय को सब चीजें जरूरी, घास आदि पानी आदि दे जिससे गाय सुखी रहे, उसको बोलते हैं गोवर्धन। और गाय को सुखी रखेगा तो ग्वाल बालों को भी सुखी रखेगा, उसको बोलते हैं गोवर्धन। तो गोवर्धन गाय और ग्वालों को सुखी रखता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जो सबसे महत्वपूर्ण और परम भक्त है दुनिया में, दुनिया में नहीं त्रिलोकी में नहीं वैकुंठ में नहीं गोलोक में, जो भगवान के सबसे परम भक्त है वो हैं गोपियां। सबसे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त गोपियां हैं। वो गोपियां गोवर्धन की महिमा गा रही हैं श्रीमद् भागवत में। ये अद्री जो है, ये जो पर्वत है गोवर्धन, ये हरिदास वर्य है, ये हरिदास वर्य है, मतलब हरि के दासों में सबसे महान है, जो भगवान के सबसे महान भक्त हैं, वो गिरिराज को कह रहे हैं कि ये भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। हरिदास वर्यो अद्री अबला हरिदास वर्य, ये गोपियों, ये जो गिरिराज है ना, ये भगवान हरि के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। और भागवत में हरिदास वर्य गिरिराज के लिए लिखा है और युधिष्ठिर महाराज के लिए उत्तम भक्तों की श्रेणी में सिर्फ नाम गिरिराज का आता है। मानो पूछा कि क्यों भाई, क्या बात है इसको, ऐसी क्या विशेषता है इसको कि हरिदास भगवान के भक्तों में ये महान भक्त है हरिदास। तो कहें जैसे जैसे श्री कृष्ण और बलराम के चरण का स्पर्श होता है ये प्रमोद और आनंद में हो जाता है। गिरिराज को भगवान के चरणों का स्पर्श मिला और भगवान ने अपने हाथ के ऊपर इसको धारण किया। इतना बड़ा किसका सौभाग्य होगा जिसके ऊपर भगवान के चरण पड़े हों। बड़े बड़े ऋषि देवता मुनि भगवान के चरणों की रज को उठा के धूड़ी के कणे को उठा के सर पे लगाना चाहते, यहां तो साक्षात भगवान के चरण गिरिराज के ऊपर भगवान घूमते थे ग्वाल बालों के संग में। और गिरिराज के ऊपर भगवान का जैसे चरण पड़ता था गिरिराज का पत्थर पिघल जाता था, मोम की तरह, वैक्स की तरह पिघल जाता था, मक्खन जैसा सॉफ्ट हो जाता था और आनंद में प्रफुल्लित होता कि भगवान के चरण का मुझे स्पर्श मिल रहा है। ये जो घास खड़ा है और जो पेड़ खड़े हैं ये तो उसके सारे शरीर के ऊपर बाल हैं जो आनंद में मगन होके ऊपर हो गए हैं, और झरने जो बह रहे हैं ये उनकी आंखों के आंसू हैं भगवान के आनंद के। ऐसे कह रहे कि ये गिरिराज का ये आनंद है। और फिर कहते हैं विशेषता इसकी ये है गिरिराज की कि गायों को ग्वाल बालों को गोपों को बहुत सुख देता है, भगवान का सम्मान करता है, आनंद में मोदित हो जाता है भगवान के चरण के स्पर्श से, और गायों को ग्वाल बालों को पानी देता है पीने के लिए बहुत सुंदर मीठा, घास देता है गायों को खाने के लिए बहुत सुंदर, और सुंदर सुंदर गिरिराज में कंदराएं हैं, केव्स, ऐसी सुंदर कंदराएं हैं जो गर्मी में ठंडी रहती हैं और ठंडी में गर्म रहती हैं, बरसात से सबको बचाती हैं, जहां ग्वाल बाल खेलते हैं अंदर जाके रहते हैं भगवान लीला करते हैं, और गिरिराज खाने के लिए फल फूल कंद मूल देता है गायों को और ग्वाल बालों को। ये भगवान की सेवा कर रहा है, कृष्ण और कृष्ण के गायों की और ग्वाल बालों की सेवा करता है, इसलिए गिरिराज महान भक्त है। तो किसी को भक्त बनना है भगवान का अच्छा तो गाय की और भक्तों की सेवा करनी चाहिए। आगे इंद्र कहेगा जब गाय को साथ लाएगा, बोला असल में तो आप ही हम सबके इंद्र हैं भगवान श्री कृष्ण, आप गायों को पालते हैं, गायों का देखभाल करके रक्षा करते, सारे देवता तो गाय के अंग में रहते हैं, तो सारे देवता की आप ही तो पालना कर रहे हैं, आप ही तो मालिक हैं, गाय के एक एक अंग में एक एक देवता, सारे देवता गाय के शरीर में समाये हुए, और इन गायों को भगवान पालता है तो सारे देवताओं को भगवान ही तो पाल रहा है ना। तो ये गिरिराज कहां से आया, तब शास्त्र में लिखा है गोलोक वृंदावन में रास मंडल के स्थान के ऊपर गोपियों के बीच में बैठे हुए भगवान को श्री राधा रानी प्रार्थना करती है, हे गोपाल, हे श्याम सुंदर, हे नंदलाल, अगर आप हमारी प्रेम भक्ति से संतुष्ट है तो ऐसा सुंदर स्थान प्रकट कीजिए जहां हम नित्य लीला कर सके। भगवान श्री कृष्ण आंखें बंद करके अपने हृदय में भक्तों के प्रेम के लिए ऐसे स्थान को ढूंढ रहे हैं, तो भगवान के हृदय से भक्तों के ऊपर अनुग्रह के लिए एक प्रकाश पुंज उनके आंखों से नीचे धरती के ऊपर उनका प्रेम हृदय का बाहर ऐसे छलक के आया, और वो छोटी थोड़ी देर में इतना छोटा सा पत्थर, फिर बड़ा पत्थर, फिर पर्वत से बन गए। तो गिरिराज पर्वत ऐसे भगवान के हृदय से प्रकट हुआ है श्री कृष्ण के, और जब वो पर्वत बहुत सुंदर बड़ा हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को कहा, देखो ये स्थान यमुना के किनारे के ऊपर ये गिरिराज प्रकट हुआ है, सब गोपियों ने आंखों के सामने देखा कि ये तो कृष्ण के हृदय से निकला प्रेम भक्तों के लिए जो है वो। फिर राधा और कृष्ण उस पर्वत के ऊपर अलग अलग जगहों पे झरने देखे, कंदराएं देखे, कंदमूल देखा। राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई, बहुत सुंदर स्थान आपने प्रकट किया, बड़ी आनंद हुआ, ये तो हमारे लीला का स्थान सदा रहेगा। तो ऐसे गिरिराज गोवर्धन सदा गोलोक में विराजते हैं। जब धरती माता ब्रह्मा जी आदि देवताओं को लेकर भगवान श्री कृष्ण को अवतार लेने के लिए विनती करना, धरती का भार उतारने के लिए गई, तो भगवान ने कहा मैं अवतार लेके आऊंगा। तो भगवान ने जब यहां देवताओं को भेज दिया, तब राजा रानी से कहा कि मैं तो धरती के ऊपर जा रहा हूं अवतार लेकर, मैंने ब्रह्मा जी को वचन दिया है, आप प्रिय साथ चलो। पर मैं चलूंगी, आपके बगैर तो रह नहीं सकती हूं, लेकिन वृंदावन में मेरे को सुख नहीं मिलेगा। वृंदावन में चलूंगी तो मुझे गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जमुना नहीं है, वृंदावन में है। आप जा रहे हैं धरती पे, तो गिरिराज अगर नहीं है और जमुना जी नहीं है तो मेरे को सुख नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं मैं आपके साथ चलूं, तो गिरिराज गोवर्धन और जमुना जी वहां होना चाहिए, ये हमारी लीला स्थली हमारे साथ जानी चाहिए। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपके लिए गिरिराज को और जमुना जी को पहले ही भेजने का प्रबंध किया गया है, ये वृंदावन में मिलेंगे। तो गोलोक से गिरिराज कैसे धरती के ऊपर आए? द्रोणगिरी नाम का एक पर्वत है श्यामल द्वीप में, ये जम्बू द्वीप है हम जिसमें रह रहे हैं, एक श्यामल द्वीप है, ऐसे और 9 द्वीप है। श्यामल द्वीप में एक पर्वत है, उसका नाम है द्रोणगिरी। उसके घर में एक बेटा हुआ, सब पर्वत देखने आए तो ये तो पर्वत बड़ा अद्भुत है, हमारे जैसा तो नहीं लग रहा है। सबको आश्चर्य हुआ, सबने उसका पूजा किया और उसका नाम हुआ गिरिराज। गिरी का मतलब पर्वत, राज का मतलब राजा, पर्वतों का राजा। अरे हिमालय महा बड़ा पर्वत है, ये पर्वतों का राजा कैसा है? इसकी चोटी तो हिमालय से भी बहुत बड़ी थी। तो एक दिन पुलस्त ऋषि द्रोण गिरी के मेहमान हुए और छोटे गिरिराज को देखा, उसको बड़ा अच्छा लगा और द्रोण गिरी को बोला, महाराज द्रोण पर्वतराज, मैं काशी में रहता हूं, बनारस में रहता हूं, वहां कोई पर्वत नहीं है, ये छोटा आपका बालक गिरिराज मेरे को दे दो, मैं वहां स्थापित करूंगा और वहां मैं भजन करूंगा, तपस्या करूंगा, योग अभ्यास करूंगा, समाधि लगाऊंगा, मुझे अच्छा लग रहा है। द्रोण कहता है मैं बेटा कैसे दे दूं आपको मेरा, लेकिन पुलस जैसा ऋषि अगर घर में आए कुछ मांगे तो ना भी नहीं किया जा सकता। गिरिराज जाने को तैयार हुआ लेकिन कहा महाराज पुलस शर्त एक मेरे ये है कि मेरे को हाथ के ऊपर उठा के चलो और दूसरा कहीं रखोगे तो फिर मैं वहां से आगे चलूंगा नहीं। पुलस ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, मेरे को तपोबल है, मेरा योग सिद्धियां हैं, और ऐसे करके गिरिराज को हाथ से उठाया और पुलस ऋषि आकाश मार्ग से चलने लगे। गिरिराज ने जब वृंदावन का क्षेत्र ब्रज क्षेत्र देखा तो कहा यही तो जगह है जहां कृष्ण आएंगे लीला करेंगे अपने भक्तों के संग, अब क्या करना चाहिए। योग माया से पुलस्त ऋषि को एकदम जोर से लघु शंका लगी, पेशाब करने के लिए परेशानी हुई। अब पुलस्त रोकने का प्रयास करे लेकिन ऐसा सबसे मुश्किल काम है, नहीं रोका जा सकता है। ये भगवान इसके कहते हैं यमराज का स्थान कौन सा है, ये जो अपान वायु से बोलते हैं अपान वायु, अपान वायु यमराज का स्थान है। जैसे यमराज से भय लगता है, सब लोग कहते हैं निकले निकले यम नहीं आए तो अच्छा है, ऐसे आदमी रोक नहीं सकता है, इसको रोकने का प्रयास करेगा बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो पुलस और जब बहुत पीड़ा होती है तब आदमी का दिमाग भी काम नहीं करता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पुलस ने नीचे रख दिया ऋषि ने, वो तो गए, कान के ऊपर जनोई रखा, लघु शंका किया, नहाया धोया कपड़े, फिर आके गिरिराज को उठाने का प्रयास किया, गिरिराज उठे नहीं, भारी हो गया, आश्चर्य है। चलो बेटा, नहीं चलूंगा, मैंने कहा था आप रखोगे तो नहीं चलूंगा, वह मैं आपको छोड़ के तो नहीं जा रहा था, चलो लघु शंका करके आ गया, पर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। पुलिस को बहुत क्रोध आया, इतनी देर उठा के आया बाहर सर के ऊपर, और अभी ये चलता भी नहीं है यहां से, भिक्षा भी मांगी और रास्ते में रह गई, बड़ी समस्या हो गई, अब क्या करना चाहिए। बोले मैं तेरे को शराब देता हूं रोज का, तुम एक मस्टर सीट जितना धरती में चले जाओगे। मुस्कुरा के गिरिराज कहते अच्छा किया आपने, अभी तो मैं इतना बड़ा हिमालय जितना हूं, जब श्री कृष्ण यहां लीला करेंगे तो ऊपर कैसे इतने चढ़ेंगे सब ग्वाल बाल छोटे छोटे गाय, तब तक मैं छोटा हो जाऊंगा, जब कृष्ण अवतार होगा तब मैं इतना छोटा हूंगा कि ऊपर घूम लेंगे गाय बिछड़े सब। तो ऐसे गिरिराज इस धरती के ऊपर आए और गोप ग्वाल बालों को भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब ये सामान जो घर में तैयार हुआ है ना, इस अन्न का सब घरों के अंदर बनाओ, बहुत प्रसाद बनाओ, चावल बनाओ और ऊपर गाय का घी डालो और घी पीला पीला ऐसे लगना चाहिए जैसे सोने का पहाड़ है, चावल सफेद उसके ऊपर घी पीला पीला डालो सोने का पहाड़ लगे, और हलवा पूरी 56 भोग बनाओ और गिरिराज के सामने चलेंगे अर्पण करने के लिए। अब तो ग्वाल माल निकले, सब भोजन की सामग्री लेकर ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और पुरुष सूक्त पढ़ा और फिर भगवान गिरिराज को भोग अर्पण करने की तैयारी होने लगी। और भगवान श्री कृष्ण का जैसे भोग अर्पण करेंगे गिरिराज को, फिर गिरिराज की आरती करेंगे, फिर गिरिराज की परिक्रमा करेंगे। अब भोग ही अर्पण हो रहा था, इतनी देर पे कृष्ण तो यहां उंगली पकड़ के खड़े थे नंद बाबा की, गोवर्धन पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ा विशाल देवता प्रकट हुआ, स्वयं कृष्ण उधर बहुत बड़ा रूप धारण किया और हजारों बड़े बड़े हाथ और सारा प्रसाद ऐसे उठा के अब खाने लगा, जो प्रसाद था उठा के ऐसे मुंह में डाल रहे हैं। कन्हैया बोलता देखो इंद्र कभी आया था खाने? नहीं आया ना, ये हमारा गोवर्धन देव साक्षात भगवान आ गया, आपका प्रसाद ग्रहण कर रहा है, देखो प्रसाद खा रहा है गोवर्धन। सब बड़े आनंद में हो गए, तब तक गोवर्धन बोला आनी और लाओ और लाओ, गोप कुछ करे दे, बोला ये तो सब खत्म हो गया पर हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा, और लाओ। तो एक बहुत ब्राह्मण था सरल, उसने तुलसी दल लिया और गिरिराज को अर्पण किया, गिरिराज संतुष्ट हो गए और फिर सारा प्रसाद गिरिराज ने महाप्रसाद करके वापस दिया। जब सारा प्रसाद बाहर आ गया तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अब ऐसे करो, प्रसाद पहले ब्राह्मणों को खिलाओ, गायों को हरा हरा घास खिलाओ बहुत, और फिर ये प्रसाद बांटो पूरे ब्रज के अंदर, कुत्ता हो मिले तो कुत्ते को पेट भर के खिलाओ, चंडाल मिले तो चंडाल को खिलाओ, कोई ब्रज में इस प्रसाद से वंचित नहीं होना चाहिए, लेकिन एक दाना भी इंद्र को नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब ब्रज के अंदर छोटे से छोटी चूंटी भी इंद्र से ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो भगवान ने कहा ऐसे कि, और ये एक लाइन भगवान श्री कृष्ण के वचनों की कि प्रसाद सबको मिलना चाहिए, पशु पक्षी को भी मिलना चाहिए, ये प्रभुपाद के हृदय में इसका इतना प्रभाव था कि 73 में गिरिराज पूजा मायापुर में हो रही थी और प्रसाद खाने के बाद प्रभुपाद ने बाहर कुत्तों का भौंकना और बच्चों का चिल्लाना सुना, प्रभुपाद ने ऊपर से देखा दीवार के पीछे जो प्रसाद खा के लोग प्लेटें फेंक के गए थे उसमें थोड़ा प्रसाद बचा हुआ था, कुत्ते उसको खाना चाह रहे थे, बच्चे उसको भगा के बच्चे वो खाना चाह रहे थे, कुत्ते और बच्चों के बीच में उस बच्चे वो प्रसाद खाने में झगड़ा था। प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए, प्रभुपाद ने सब अपने भक्तों को बुलाया, लीडर सीनियर जीबीसी को, कहा मंदिर के 10 किलोमीटर में कोई आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। कृष्ण पिता है, ये सब बालक हैं जो रहते हैं, पशु पक्षी, ये तो इंसान है, क्या पशु पक्षी भी मंदिर के चारों ओर भूखा नहीं होना चाहिए। और उस दिन से इस गिरिराज पूजा के शिक्षा के प्रसाद सबको मिलना चाहिए, प्रभुपाद की शिक्षा के अनुसार। ये भागवत की शिक्षा प्रभुपाद ने पूरे विश्व के अंदर प्रैक्टिकल करके दिखाई। उस दिन से आज तक नहीं तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गरीब आदमियों को प्रसाद, कृष्ण प्रसाद भक्तों के द्वारा मिल रहा है आजकल भी हजारों जगह पे। आज भी नहीं तो भी ओवर मिलियन चिल्ड्रेन को दोपहर की मील आज भी दिल्ली और बेंगलोर आदि मंदिर देते हैं। मिलियन चिल्ड्रेन पर डे 10 लाख बच्चों को भोजन बना के स्कूल में दे के आते हैं। तो ये प्रसाद वितरण गोवर्धन पूजा का जो है, और मां चेतना महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में ऐसे कहा था, प्रसाद बहुत बनाओ और कुत्ता और चंडाल और सबको जगन्नाथ का प्रसाद मिलना चाहिए। वही कृष्ण जगन्नाथपुरी में ऐसे प्रसाद बांट रहे थे सारा। तो भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत स्पेशल मिशन है कि सबसे ज्यादा प्रसाद वितरण होना चाहिए भगवान का। तो ये प्रसाद वितरण हुआ, फिर ग्वाल बालों ने परिक्रमा की, आगे ब्राह्मण गाय, आगे फिर ब्राह्मण गा रहे थे वेद मंत्र, फिर सारे ग्वाल बाल, फिर बैलगाड़ियों के ऊपर यशोदा मैया कन्हैया को लेकर, रोहिणी मैया बलराम जी को लेकर, ये सब बैलगाड़ियों में गोवर्धन की परिक्रमा की। सब बड़े प्रसन्न हो गए, पूरा ब्रज आनंद में प्रसाद खाया, इतना बड़ा उत्सव हुआ, गिरिराज की परिक्रमा हुई, बड़े सब खुश हो गए। लेकिन एक बात में बिल्कुल खुश नहीं था, कौन? इंद्र ने, तो इंद्र को बहुत बड़ी परेशानी हुई। भगवान श्री कृष्ण, इंद्र भगवान का भक्त है, भक्त है तब तो उसको इंद्र का राज दिया है। लेकिन देखा कि भक्त के अंदर एक तो ये बात है, मेरा भक्त है तो फिर मुझसे, मेरे पिता से और मेरे भक्तों से पूजा क्यों ले रहा है और मेरे सामने क्यों ले रहा है? जब मेरा भक्त है तो मेरे सामने उसकी पूजा क्यों होनी चाहिए? इसका मतलब उसको अहंकार हो गया। तो भक्त के अंदर अगर अहंकार है तो उसका उद्धार करना भी भगवान का विशेष एक अनुग्रह है, दया है, कृपा है। तो भगवान ब्रज में रहते हुए इंद्र का जो असुरी भाव आ गया था इंद्र में, असुरी भाव का मतलब राक्षस जैसा उसके अंदर भाव जो आ गया था भक्त के अंदर, उसका निवारण करना था भगवान को। तो इंद्र ने देखा मेरा तो पूजा हुई नहीं, आज क्या बात है, और इतना शोर हो रहा है नीचे, आवाज इतना कहां से आ रहा है, मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है। तो उसने अश्विनी कुमारों को बुलाया जो डॉक्टर हैं देवताओं के, उन्होंने कान को देखा, बोला कान में तो कुछ नहीं है, ये नीचे से जो गोवर्धन परिक्रमा में कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये तो वो जो आवाज वहां से आ रहा है उसके कारण आपके कान में और दिल में दर्द हो रहा है, इसका कोई बीमारी नहीं लग रही है। अब तो इंद्र को और क्रोध आया, अरे ये छोटा 7 साल का बच्चा हमारा पूजा बंद करा के और पत्थर की पूजा करा रहा है, पहाड़ की पूजा कराता है, मैं देखूंगा इन सबको। क्रोध में आके संवन तक जो बादल है, संवर तक जो प्रलय के समय सब जगह पानी से सबको डुबा देते हैं, उनको बुलाया, आओ जाओ ब्रज में, गाय ब्रजवासी कोई नहीं रहना चाहिए, डुबा दो। वो कहता है महाराज अभी प्रलय का समय नहीं है, इस वक्त से क्यों भेज रहे हैं हमको वहां? बोला मैं साथ चल रहा हूं, चिंता मत करो, तूफान आएगा साथ में, साइक्लोन जो होरिकॉन जो कुछ भी है सब साथ लेके चलो, वज्र लेके मैं स्वयं चलता हूं, ब्रज को डुबा देना है, मेरा पूजा बंद कर दिया। शिक्षा क्या मिलती है कि आदमी जिसको पूजा की आदत हो जाती है ना, उसको पूजा बंद होने के बाद बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। एक बहुत संत पुरुष था, उसके घर में गाय थी और वो जा रहा था गंगा का स्नान करने। तो गाय अपनी नई, उसका बछड़ा पड़ोसी को बोला, तो मेरी गाय को घर में रखना, दूध पीना, सामान में सारा खाने का गाय का दे जाता हूं, मैं महीने के बाद आऊंगा तीर्थ करके तो गाय वापस ले लूंगा। तो उसने गाय को दूसरे दिन दुआ, दूध निकाला और बाहर कुत्ते को पिलाया। तो घर वालों ने कहा, दूध हमको दो ना, कुत्ते को क्यों दे रहे हो? बोला, अभी जरूरी नहीं है आपके लिए, गाय दूसरे की है, कुत्ते को पीने दो। एक महीना सब घर वाले देख रहे हैं, सेवा हम कर रहे हैं, दूध कुत्ता पी रहा है। महीने के बाद जब वो वापस आया तो उसने गाय अपनी वापस ली। जब गाय वापस गई तो घर वालों को बुला के उसने कहा, कुत्ते को देखो, अब शाम को कुत्ते को दूध नहीं मिला, क्या क्या करके चिल्लाने लगा। तो उसने बोला, ये क्या है? बोला, इसलिए मैंने आपको दूध नहीं दिया, आपने पिया होता तो आज आपका ये हाल होता। आदत जो पड़ गई होती। तो जिसको सम्मान की आदत होती है ना, और जब नहीं मिलता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है। इसलिए इंद्र को बहुत क्रोध आया। और क्या, जब अहंकार होता है क्रोध से एकदम प्रकट हो जाता है। तो अब क्रोध आया इंद्र को, वो बादल ने ऊपर से बरसात कैसे शुरू की, जैसे जैसे ऊपर से हाथी के जो सूंड होता है, ऐसे मोटे मोटे बरसात की धाराएं और तीर के समान तेज बरसात ऐसे गिर रही है कि गाय बिचारी अपने बच्चों को पेट के नीचे छुपाकर सर नीचे करके गोपाल की तरफ भाग रही है। गोपाल रक्षा करो। सारे ब्रजवासी कहते, कन्हैया इंद्र ने देखो हमारे ऊपर इतना सारा कोप किया, बरसात बरसा के डुबाना चाह रहा है, हमने तो आपके कहने के ऊपर गोवर्धन की पूजा कर दी, अब देखो इंद्र हमारा क्या कर रहा है। कन्हैया कह, घबराओ मत, डरो मत, सब गिरिराज की पूजा की है, गिरिराज रक्षा करेंगे, आइए आइए गिरिराज के पास। सब ब्रजवासी गिरिराज के पास गए। भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से ऐसे जैसे मशरूम को उठाते हैं ना छोटे, ऐसे उठा के भगवान श्री की, अथवा कोई हाथी हो और हाथी किसी गन्ने को जैसे उठाता हो, ऐसे कन्हैया ने गिरिराज को उठा लिया और अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली के ऊपर धारण कर लिया और कहा, सब ब्रजवासी अपने गाय धन लेकर गौ धन को इसके नीचे आओ, ये छत्री हो गई है, गिरिराज आपकी रक्षा करेगी। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, गिरिराज के ऊपर तुम चक्र लगाओ, ऊपर पानी नहीं गिरना चाहिए, सुखा दो सब ऊपर से आते हुए पानी को। और शेषनाग को भगवान ने कहा, गिरिराज के चारों ओर धरती के ऊपर ऐसे लेट जाओ कि बाहर का पानी कोई अंदर ना आए, अंदर एक बूंद पानी की भी नहीं आनी चाहिए। ये सारी व्यवस्था किया। सात दिन सात रात ब्रजवासी बड़े आनंद में है, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। गोपियां तो बड़ी खुश हैं, नहीं तो वे कृष्ण को देखने जाती थी तो घर वाले नाराज होते थे, सास झगड़ा करती थी, लोग कहते थे, आज कोई कहने वाला नहीं है, कृष्ण को बड़े जी भर के दिन रात देख सकते। ग्वाल बाल खुश हैं, कहते हैं, रात को कन्हैया घर जाता था हमको सुबह तक इंतजार करना पड़ता था, अब तो हम कन्हैया के साथ सात दिन रहेंगे। लेकिन माँ यशोदा कहती, इतना बड़ा पहाड़ मेरे छोटे बच्चे ने उठाया, हे भगवान नारायण, मेरी भक्ति से अगर प्रश्न हो तो इस पहाड़ को रुई जैसा, कप्पा जैसा, काटन जैसा हल्का कर दो, मेरे बच्चे को कष्ट नहीं होना चाहिए। मधु मंगल कहते, हे माँ, मैया यशोदा, ये पर्वत तो मैं ब्राह्मण हूं, मेरे मंत्रों से ऊपर उड़ा हुआ है, कन्हैया को थोड़ी इसके ऊपर भार है, मैं खड़ा हूं ना। तो ग्वाल बालों ने अपने डंडे लगाए। मधुमंगल कहता है, बहुत सुंदर गोवर्धन का नीचे चमकता हुआ जो तला है उसके ऊपर तुम स्क्रेच मत डालो, तुम्हारे डंडे उसमें स्क्रेच डाल रहे हैं, ये ऊपर है पहले से। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं मधुमंगल, ये मेरे प्रेम के कारण डंडे दे रहे हैं। तो मधुमंगल बोलता है, आपको तो कोई दर्द नहीं है ना, मैं थोड़ा दबा दूं आपका हाथ। नहीं नहीं कोई इसकी जरूरत नहीं। माँ यशोदा फिर भी कहती, कन्हैया पीड़ा तो नहीं हो रही है? तब तो गोपियां खड़ी थी पीछे, कहती हैं, माँ यशोदा हमारे घर का मक्खन चोरी का खाया है, इसलिए इसके ऊपर पर्वत उठाने की शक्ति आ गई है। आप गोपियां बड़ी खुश हैं कि हमारा चोरी वाले मक्खन ने आज काम करके दिखाया, इतना माल खाया है हमारा, आज गोवर्धन पर्वत उठा के रखा है। तो गोपियां बड़ी खुश हो गई कि हमारे मक्खन का कमाल है। ग्वाल बाल कहते हैं, हमारे डंडे का कमाल है। मधुमंगल कहता है, मेरे मंत्र का कमाल है। सभी खुश हैं, आनंद से मगन हो रहे हैं। इंद्र के ऊपर से सारे संवत बादल थक गए, कुछ हो नहीं रहा है। सबने उन्होंने कहा इंद्र वहां तो कुछ नहीं हो रहा है, वो तो एक पर्वत को उठा के खड़ा है, छोटा सा बालक है उंगली के ऊपर। इंद्र ने तूफान भेजा, साइक्लोन भेजा, बोले इसकी उंगली के ऊपर से ये पहाड़ गिरना चाहिए, ऊपर से थंडर बोल्ट जो उसका वज्र है उसका प्रहार किया, लेकिन गोवर्धन के ऊपर कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा है। तब तक इंद्र थक हार गया, बहुत शर्मिंदा हुआ, बादल हट गए, सूरज निकला, प्रकाश हुआ। कृष्ण का ग्वाल ग्वाल बालों अपनी गाय लेके अब अपने अपने घर जाओ, देखो सूरज निकल गया, बाहर कीचड़ भी नहीं है, बाहर कहीं पानी गिरा हुआ भी नहीं दिख रहा है। इतना इंद्र ने ऊपर से पानी फेंका लेकिन कहीं एक कीचड़ भी नहीं थी, किसी के पांव को कीचड़ भी नहीं लगी। ग्वाल जो डंडा देके खड़े थे उसने बोला कन्हैया तुम निकलो, मैं हम डंडा देके खड़े हैं। कन्हैया बोलता है तुम जल्दी करो बाहर जाओ, पर नहीं अकेले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने ऐसे आंख मार के थोड़ी देर के लिए आधा गोवर्धन का भार कम किया और उनके डंडे और खुद टेढ़े हुए। तो भगवान श्री कृष्ण को राधा गिरिधारी बोलते, राधा गिरिधारी, तो राधा रानी का इसमें कैसा, गिरिधारी राधा कैसे हो गई? तो कहते भगवान जब गोवर्धन पहाड़ को धारण करके खड़े थे तब वो राधा रानी की आंखों से आंखें मिलाई हुई थी, राधा रानी की आंखों से सारी शक्ति कृष्ण को मिल रही थी जिससे वो गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए थे, इसलिए उसको राधा गिरिधारी बोलते। राधा रानी की आंखों को देखते देखते कृष्ण की इच्छा हुई, राधा रानी का गालों से नीचे गले तक देखने के लिए आंख थोड़ी नीचे आई, गोवर्धन हिलने लगा। तो सब गोपियों ने कहा राधा रानी तेरी आंख मत हिलाना, तेरी आंख हिलेगी गोवर्धन कन्हैया का हाथ हिलेगा और गोवर्धन गिरेगा, तुम ऐसे की ऐसे खड़ी रहो, देखे बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़ी रहो। तो राधा गिरिधारी इसलिए बोलते हैं कि राधा रानी की शक्ति से कृष्ण इस पहाड़ को धारण किया। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, क्योंकि गोपी से प्रेम करता है, उसके प्रेम के कारण गोवर्धन को धारण करता है। और इस बीच में खड़े खड़े गोपाल के मन में आया, बांसुरी निकाल के ऐसे बजाने लगा सीधे हाथ से, उल्टे हाथ पे बांसुरी की तान छोड़ी, सबने कहा बंद करो बांसुरी। बोला क्यों, आपकी बांसुरी बजेगी तो पत्थर पिघल के पानी होगा और ये गिरिराज पिघल गया तो हम डूब जाएंगे, बांसुरी बंद करो। नहीं, तो ग्वाल बाल बड़े आनंद में, इंद्र बहुत बड़ा क्रोध में और यहाँ आनंद लगा हुआ है। अब सब ग्वाल बाल बाहर निकल गए, डंडे अपने हटा दिए, कन्हैया ने बड़े मान से उस गिरिराज को वहां स्थापित किया, सब गोप अपने घर गए, सब आनंद में मगन हो गए। दूसरे दिन बड़े बड़े गोपों ने जाके नंद बाबा को कहा, नंद लाल नहीं, हे नंद महाराज, आपका लाला कौन है? आपने हमको बताया नहीं, आप हमारे बिरादरी को हमको नहीं बताया, कौन आपके घर में देवता को बिठा के बैठे हो? 6 दिन का छोटा था, पूतना राक्षसी को मार दिया, 3 महीने का भी नहीं था, सट्टासुर को गिरा दिया, 1 साल का बहुत बड़े तृणावत को गिरा दिया, वो वत्सासुर आया था उसको उठा के घुमा के कपोत पेड़ के ऊपर फेंक दिया, 8 किलोमीटर से ज्यादा अघासुर के पेट के अंदर घुस गया, उसको मार दिया, बकासुर की दोनों चूच को ऐसे अलग करके फेंक दिया, और अभी इतना बड़ा पर्वत 7 दिन उल्टे हाथ से उठाया, है कौन ये? सब गोप बड़े आश्चर्यचकित, नंद बाबा से नाराज होके कह रहे कौन है ये, आप हमसे छुपा के रखा हुआ है? नंद बाबा ने कहा बैठिए, मैं आपको बताता हूं, गर्ग मुनि ने जब नाम रखा था कृष्ण बलराम का मेरी गौशाला में, तब कहा था ये नारायण के समान है, ये पहले रक्त वर्ण में और श्वेत वर्ण में आया था, अब ये सांवले वर्ण में आया है और आगे ये गोरे वर्ण में आएगा, पहले ये वसुदेव का बेटा था इसलिए इसको वासुदेव भी कहेंगे, आप इसकी अच्छी तरह से पालन पोषण करना, आपके संकट सब ये दूर करेगा। ये जब कथा सुनी तो सब गोप बड़े प्रसन्न हो गए, ये कोई मोबाइल बज रहा है इस वजह से ऐसे करता है। तो ऐसे ग्वाल बालों को नंद बाबा ने गर्ग मुनि का पुराना इतिहास बता के संतुष्ट किया। दूसरे दिन कृष्ण बलराम अपनी गाय लेके चराने के लिए गए, गोप अपने घर में आनंद में है। एक जगह कृष्ण सब गोपों और गायों को छोड़ के गिरिराज के एक स्थान के ऊपर अकेले बैठ गए। अब ऊपर अंदर इंद्र को बहुत शर्म आने लगी, अपने दूसरे देवताओं की तरह आंख नहीं मिला सके, बोला इतना बड़ा गहरा था मैं डुबा दूंगा, हुआ तो कुछ भी नहीं। वो घरवाली के सामने भी आंख मिला के ना देखे सची को, बड़ा शर्मिंदा हो गया। किसके पास जाए? गुरुजी के पास गया। बृहस्पति को प्रणाम किया, गुरुजी अपराध हो गया, मैंने ब्रज को डुबाना चाहा, गायों को मारना चाहा, लेकिन अब क्या करूं। बृहस्पति ने कहा भगवान श्री कृष्ण का अपने अपराध किया है, मैं कुछ नहीं तुम्हारी सहायता कर सकता, कोई आदमी कर सकता है तो ब्रह्मा जी के पास जाओ। इंद्र ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने डांट कर कहा तुमने ऐसा उद्यम काम किया क्यों, अपने दूसरे देवताओं की तरह आंख नहीं मिला सके, बोला इतना बड़ा कह रहा था मैं डुबा दूंगा, हुआ तो कुछ भी नहीं। वो घरवाली के सामने भी आंख मिला के ना देखे सची को, बड़ा शर्मिंदा हो गया। किसके पास जाए? गुरुजी के पास गया। बृहस्पति को प्रणाम किया, गुरुजी अपराध हो गया, मैंने ब्रज को डुबाना चाहा, गायों को मारना चाहा, लेकिन अब क्या करूं। बृहस्पति ने कहा भगवान श्री कृष्ण का अपने अपराध किया है, मैं कुछ नहीं तुम्हारी सहायता कर सकता, कोई आदमी कर सकता है तो ब्रह्मा जी के पास जाओ। इंद्र ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने डांट कर कहा तुमने ऐसा उद्यम काम किया क्यों, उल्टा काम क्यों किया, तुम मत जाना, तुम्हारे को माफ नहीं करेगा कृष्ण, मुझे मालूम है, मैं भी एक बार ऐसे कर चुका हूं, गया था और चार माथों से मैं प्रणाम क्या किया, रोलर की तरह रोड के ऊपर जैसे घूमता है, जैसे घूमा, मेरे से बात भी नहीं की, देखा ही नहीं मेरी तरफ। अगर तुम्हें कृष्ण से किसी तरह से कोई क्षमा याचना, तुम्हारे को कोई फॉरगिवनेस दिला सकता है तो किसी भक्त के पास जाओ। किसके पास जाऊं? बोला वो गोपाल है, गायों की आदि माता सुरभि को साथ ले जाओ, उसको प्रणाम करो। अब इंद्र अपना मुकुट उतार के स्वर्ग का राजा, जिस स्वर्ग में सारे लोग जाना चाहते हैं, उस स्वर्ग का राजा सुरभि गाय के खुरों में सब नवा के कह रहा है हे माँ मेरी रक्षा करो, मेरे साथ चलो, गोपाल को बोलो कि मेरे को माफ कर दे। सुरभि गाय ने बोला मेरे वंश की रक्षा की है कृष्ण ने, मैं जरूर चलूंगी। सुरभि आगे हुई, ऐरावत को लेके इंद्र उस स्थान पे आया जहां कृष्ण बैठे थे। इंद्र ने प्रणाम किया, कृष्ण ने देखा भी नहीं। सुरभि मां ने जाके प्रणाम किया, कहा आपने हमारे गौवंश की रक्षा की है, मैं आपका अभिषेक करूंगी, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं आपकी सेवा के लिए आई हूं। कृष्ण मुस्कुराए, बोला मां आइए गौ माता। तब गौ माता ने कहा वो इंद्र भी आपसे माफी मांगने के लिए आया है, बोला उसको बुलाओ। तब इंद्र गया, इंद्र ने प्रार्थना शुरू की, फिर सुरभि ने अपने दूध से अभिषेक किया। इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी को भेजा, आकाश गंगा से जल लाया और भगवान का अभिषेक किया। सब ऋषि मुनि हुए आए, उनकी स्त्रियां आई, ब्रह्मा जी आया, शंकर बाबा आए, सांप गले से निकाल के रखा, मानसी गंगा में स्नान किया, फिर अभिषेक किया, ऐसे अभिषेक किया, फिर भगवान की आरती के लिए सामान, दिव्य सामान जो है वो स्वर्ग से दिव्य सामान, रत्नों से जड़े हुए चमर और आरती का सामान आया। सबने एक एक करके आरती की, ब्रह्मा ने आरती की, प्रणाम किया, बोला गोप आज से भगवान आपको हम अभिषेक करके हम सबका राजा हो आप, आपका गोविंद नाम है, आज से आपको गोविंद का अभिषेक करके गोविंद के नाम से आपकी पूजा करते हैं। सब देवता चले गए लेकिन सामान सब वहीं छोड़ के गए पूजा का। तब तक ग्वाल बालों ने देखा कृष्ण कहाँ चला गया, वो घूमते हुए आए, वहां बैठा है कृष्ण एक सिंहासन के ऊपर। बलराम जी ने देखा ये बड़ा सुंदर सिंहासन है, कहां से आया, कृष्ण के पास बैठ गया। बलराम जी दोनों बैठ गए, ग्वाल बालों ने देखा अरे ये चमर देखो कैसा रतन बना हुआ है, इधर लाओ, हे कृष्ण अच्छा लगता है, तो दूसरा उठा दे आरती आपको करते हैं। अरे वो ऐसी प्रेम से आरती करके सामान कर रहे हैं कृष्ण को, ऊपर से देवता देख रहे, बोला हम तो ऐसे घंटी बजा के डंडे की तरह खड़े थे, ये देखो कितने आनंद प्रेम से सेवा कर रहे, इनके प्रेम की सेवा के सामने हमारी तो सेवा बिल्कुल बेकार थी, कोई प्रेम ही नहीं था, ये बोल बोल कैसे आनंद से कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं। तब तक नंद बाबा आदि ने कहा अभी तक वापस नहीं आए, क्या बात है, वो भी वहां आके पहुंचे, ये कहां से आया सामान, ये कौन पूजा कर रहा है, कैसे पूजा हो रही, बहुत बड़ा पानी का कुंड बन गया वहां जहां से आकाश गंगा और दूध सुरभि का था, उस कुंड का नाम है गोविंद कुंड, आज भी वो गिरिराजमान परिक्रमा में आता है गोविंद कुंड। और उस गोविंद कुंड के किनारे नंद बाबा बोलता है ये सामान कहाँ से आया, पूजा का सामान है, ग्वाल वाल बोलते हैं हमें क्या पता, यहाँ पड़ा था हम पूजा कर रहे हैं। वो छोटा सा मधुमंगल ब्राह्मण खड़ा हुआ कहता है मेरे को मालूम है कौन है, मैं देखा था एक गाय आई ऊपर से, एक हाथी आया चार चार टस्क वाला, चार दांत बड़े बड़े निकले हुए थे, सफेद था, एक आदमी आया 1000 आंखें उसके सर के ऊपर बनी हुई थी, वो हमारे कन्हैया का पांव पकड़ के ऐसे कर रहा था, फिर वो आरती कर, चार माथे वाला आया, एक पांच माथे वाला आया, बहुत आए, पूजा किया हमारे कन्हैया का। तब देवताओं ने ऊपर से आकाशवाणी करके कहा हमने गोविंद का अभिषेक किया और इनका नाम आज से गोविंद हुआ, नंद बाबा आज आप इनका अभिषेक करके इसको ब्रज का राजा बना दो। उसी सामग्री को लेकर फिर कृष्ण का अभिषेक किया ब्रजराज के स्थान के ऊपर और सब देवताओं ने कहा हमारा ये इंद्र है, हमारा ये गाय की रक्षा करता है और सारे देवता गाय में है और ये ब्रज का राजा है। और अंत में मां यशोदा ने कन्हैया की आरती की और तब ये गोवर्धन पूजा का कार्य समाप्त हुआ। तो ये गोवर्धन पूजा आज के दिन हुई थी। श्रील प्रभुपाद जी अंतिम समय जब इस धरती से जाने से पहले गोलोक धाम, उनके एक इच्छा थी कि मुझे गोवर्धन की परिक्रमा करो। उनकी अंतिम इच्छा थी, लोकनाथ स्वामी महाराज को कहा था कि बैलगाड़ी का अरेंजमेंट करो, मैं उस बैलगाड़ी में परिक्रमा करना चाहता हूं। लेकिन प्रभुपाद इतने कमजोर थे कि बैलगाड़ी में डॉक्टरों ने मना किया, लेकिन प्रभुपाद की अंतिम इच्छा गिरिराज परिक्रमा करने की थी। चेतना महाप्रभु गिरिराज की एक शिला को छाती के ऊपर धारण करके रखते थे, ऐसे आलिंगन करते थे गिरिराज को जिसे राधा रानी कृष्ण को आलिंगन करती, वो कृष्ण से अभिन्न शिला को समझते थे। वो शिला चेतना महाप्रभु ने गिरिराज का रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने हाथों से दिया था, उसको लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी गिरिराज में आकर रहे थे और वो शिला अभी भी वृंदावन में कहीं है जो महाप्रभु ने दी थी। सनातन गोस्वामी प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, बूढ़े हो गए चकलेश्वर महादेव में रहते थे, तब कृष्ण उनके सामने बाल रूप में प्रकट हो गए, कहते हैं बाबा रोज गिरते हो, चल नहीं सकते हो, परिक्रमा बंद करो। नहीं मेरा नय मैं करूंगा। तो गोपाल स्वयं कृष्ण ने गिरिराज की एक शिला दी थी, कृष्ण के चरण के निशान और बांसुरी और गाय के खुर के निशान है, इसकी बाबा परिक्रमा कर लिया करो। तो गिरिराज की शिला कृष्ण के समान उसकी पूजा होती है, कृष्ण जैसे सालंग्राम की पूजा होती है ऐसे गिरिराज शिला की पूजा होती है। तो गिरिराज गोवर्धन बहुत बड़े दयालु हैं कलयुग के अंदर, और ऐसे गर्ग संहिता में लिखा है कि बहुत से तीर्थ हैं गिरिराज की तलहटी में, बहुत से तीर्थ हैं राधा कुंड श्याम कुंड गोविंद सरोवर आदि बहुत से तीर्थ हैं, लेकिन एक स्थान ऐसा है रास मंडल का जहां रास हुआ करती थी गिरिराज पे, वहां 4800 साल के बाद साक्षात स्वयंभू भगवान श्री कृष्ण गोवर्धनधारी के रूप में प्रकट होंगे और उसका नाम श्री नाथ जी होगा। ये माधवेंद्रपुरी 4800 साल के बाद इस लीला के उसी स्थान से गोविंद कुंड के पास उस नाथ जी श्री नाथ जी को प्रकट किया, वो भगवान इस रूप में आज श्री नाथ जी के नाम से नाथ द्वारा में पूजे जाते हैं। भारत के चार कोनों में एक तरफ जगन्नाथ है, एक तरफ द्वारका नाथ है, एक तरफ बद्रीनाथ है, एक तरफ रंगनाथ है, लेकिन भारत के बीच में श्रीनाथ है। जो सिर्फ श्रीनाथ जी का दर्शन करेगा उसका ये चारों नाथों का दर्शन अपने आप हो जाएगा। तो वो श्रीनाथ जी इस गिरिधार गोवर्धन ऐसे आज वो नाथ द्वारा में उदयपुर के पास नाथ द्वारा है, वहां श्रीनाथ जी अभी इसी ये रूप है भगवान श्री कृष्ण का जो प्रकट किया था हुआ था शास्त्र के अनुसार, उसका दर्शन किया जा सकता है कभी जाकर। तो ये श्रीनाथ जी के श्री गोवर्धन के ऊपर भगवान की नित्य लीला आज भी होती, आज भी उनकी मान्यता है। नाथ द्वारे में भगवान को सुबह 7 बजे दर्शन खोलते हैं, सर देर से खोलते हैं, बोलते भगवान रात को रोज गोवर्धन चले जाते हैं, बैलगाड़ी वहां रखते हैं कि गोवर्धन रात को सारे गोवर्धन रहते हैं वहां अपनी रास लीला क्रीड़ा करके सुबह सवेरे थके हुए आते हैं, इसलिए मत जल्दी उठाओ, उनकी ये मान्यता है। और वैसे बाल गोपाल है, जल्दी उठाना नहीं चाहिए, 7 साल का है, तो उनका मंगल आरती देर से होता है, थोड़ा 6:30 बजे के करीब साथ में। तो उनका अभी भी ये मान्यता है कि रोज नाथ जी गिरिराज जाते हैं, और गिरिराज धरण, उनका नाम है गिरिराज धरण गोवर्धन नाथ, ये वल्लभ संप्रदाय के द्वारा आजकल पूजित है। ये श्री वल्लभ आचार्य के बेटे विठल आचार्य को उनकी पूजा माधवेन्द्रपुरी के द्वारा मिली थी, उसके बाद वो ठाकुर जी वहां चले गए हैं। तो ये गिरिराज गोवर्धन की, गिरिधार राधा गिरिधारी ठाकुर की, श्रीनाथ जी भगवान की, श्री प्रभुपाद की और प्रेमानंदे। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका। तो ये गिरिराज भगवान की कथा है। आप भी आज गए मंदिर में, गिरिराज का दर्शन किया, प्रसाद का गिरिराज बनाते हैं।